अब आगे देखिए कुछ और आईने हैं। अल्लाह के नबी तो जाहरी बातें जानते थे, आपको दिलों का नहीं पता था, लेकिन अल्लाह अपने नबी को गाइड करते थे। तो अब एक जाहरी कैफियत जो मुनाफिक के साथ तो बंधी हुई है, और वो क्या है, बातों का रसिया। मुंह से बातें करके खुश करता है। पिछले सबक में भी आपको मैंने स्टेप्स लिखाए थे कि पहले बातें करता है, बातें करता है, बहाने करता है, फिर एक वक्त होता है कि लोगों में मशहूर हो जाता है वो, जी ये तो हमेशा पीछे रहेंगे, और इन्होंने ऐन वक्त पे देखना कि बहाना कर देना, ये तो लेट ही होंगे। तब तो कहते हैं अच्छा अब ये बात तो पुरानी हो गई, तो फिर कस्में खाते हैं। तो यहाँ अब कस्मों की फेज आ गई। व यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और वो कस्में खा खा कर कहते हैं हम भी आप लोगों के साथ हैं। सुभान अल्लाह, ये कैसा इस्लाम और ईमान है जो कस्में खा के दिखाना पड़े, देखो हम आपके साथ ही हैं, हमारी बातों पे एतबार कीजिए, हम बहुत आपका साथ देते हैं, अंदर से तो हम बड़े खुश हैं। अब ये यहाँ जुमला ख़त्म हो गया उनका, मुसलमानों और मुसलमानों के गिरोह से छूटी हमदर्दियाँ दिलाते हैं, जबकि अल्लाह फरमाते हैं वमा हुम मिनकुम, लेकिन है मुसलमानों हकीकत में ये तुम में से नहीं है, वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रकून, बल्कि असल में ये डरे हुए लोग हैं। बड़ी बात है इसके एक अंदर, क्या कि असल में ये लोग इस्लाम के गलबे के तसव्वुर से खौफजदा हैं, और खौफ के मारे अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे हैं। ये जो यफ़रकून है ना, आप इसकी सेंस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये डरे हुए, यानी आप इसकी ग्रामर में जाएं तो इसमें क्या कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, फाराका, फराका वही लफ्ज़ है इसके अंदर, फ़िरका लफ्ज़ भी है, यानी ये किस खौफ का शिकार है कि इस्लाम गालिब हो जाएगा और हम पीछे एक जिसको कहना जी खूंटी से लगा दिए जाएंगे, हमारी कोई वक़्त नहीं रहेगी, जिसको आप कहते हैं कि स्ट्रीम लाइन को छोड़कर हम तन्हा रह जाएंगे, और हमारे लिए कोई भी फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। और आप ये भी देखिए कि यहाँ मरूबियत का माना भी है ना, कि इनको अब लग रहा है कि इस्लाम ने तो फैलना ही फैलना, अब हम अगर इस्लाम की तरफ नहीं आए तो ये तो हमें पीछे छोड़ देंगे, और एक दिन आएगा किसी को हमारा नाम भी याद नहीं रहेगा, तो लिहाजा अब हम आपके साथ चलते हैं। थोड़ा सा इस लफ्ज़ को समझिएगा, बड़ी नई फॉर्म में आपके सामने है। फ़र्कू, एक होता है फ़र्क, फिरका, वॉर है, सिर्फ अरब के फ़र्क से यहाँ लफ्ज़ बिल्कुल बदल गया। इसके अरब के अल फ़र्कू, फ़र्क, सर की मांग, जिससे दोनों तरफ के बाल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, चीर नहीं बोलते हम जिसको, ये मांग, आधे बाल इधर चल पड़ते हैं आधे हैं, इसको कहते हैं अरबी ज़बान में अल फ़र्क, ठीक है। तो इसमें जुदा करने का और फटने का मानी आ गया। अल मफरक कहते हैं मांग निकालने की जगह को, कहाँ निकालना है, रास्ते की वो जगह जहाँ से इसमें नया रास्ता फटता हो उसको कहते हैं मफरक, मफरक उत्तरी। कभी कभी आप गाड़ी में जाएं तो आगे दो रास्ते नहीं बन जाते क्या, आपको किसी एक में जाना होता है, तो उस पॉइंट को मफरक कहते हैं। और अल-फारिक वो बदली जो दूसरी छाई हुई बदलियों से हटकर एक तरफ जाए और बरसना शुरू हो जाए। और अर्द फारिक को कहते हैं वो ज़मीन जिसके पौधे एक दूसरे से फासले पर हों, कहीं कहीं हों। अब यहाँ बात है यफ़रुकून की, तो ये कौन सा फ़र्क है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो यफ़रुकून क्या है कि चूँकि कटे थे ना, इस्लाम का साथ तो छोड़ा था ना इन्होंने, तो एक छोटा सा फ़िरका बने, और याद रखिए जो कटता है ना वो कम से कम साथ एक दूसरे को अपने साथ शामिल करता है, चाहे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो दुख सुख करने वाली, क्योंकि उसने पूछते हैं सुनाओ भाई आजकल तुम जाती नहीं, दिखती नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो यहाँ जो लफ्ज़ है ना यफ़रुकून, दिल से मुंतशिर होने के मानों में, खौफ से बदख्वास है, यानी ये अलग हैं। फारक कहते हैं छोड़ देना, लैदा होना, तो यहाँ बस इतना कह लीजिए कि ये मुसलमानों के गिरोह को छोड़कर खुश खुद भी नहीं है, इनके दिलों पे अब ये खौफ तारी है कि हम तन्हा रह जाएंगे। और अगली तो कैफियत देखिए जो इससे भी बढ़ के, आयत 57, लव यजिदून मलजान, अगर ये पा लें कोई पनाहगा, मलजा के लफ्ज़ को साथ ही देख लीजिए, क्योंकि ये लफ्ज़ फिर आगे चले जाते हैं तो बाज़ दफ़ा रह जाते हैं, बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है इनको पढ़ना। मलजा का लफ्ज़ क्या रूट होगा ज़रा सा बताइए, रूट क्या होगा,
लाम जीम हमजा,
लाम जीम हमज़ा, शाबाश। मलजा का का लफ्ज लाम जीम हमजा का होगा, और यजिद उनका क्या रूट होगा? वाव जीम दाल। अब मलजा क्या लफ्ज है? लजा वल्तजा इलई, इसने उसकी तरफ पना ली, किसी चीज की तरफ मजबूर किए जाने को कहते हैं। मलजा कहते हैं एक चीज को छोड़कर दूसरी की आड़ ले जाना। दूसरी चीज औ मगारात, या कोई गार। गार का लफ्ज उर्दू में सुना, ये उसकी जमा है। गैन वाव रा इसका रूट होता है, गौर से, सर छुपाने की जगह। औ मुद्दखलन, या दखल होने की जगह, यानी सर छुपाने की जगह। दखल क्या होता है? दाखला, मदखल, सबको पता है। तो मुद्दखला की सूरत में जब ये आता है तो ऐसी जगह जहाँ बंदा सर छुपा ले। और उर्दू में हम बोलते हैं मोर्चे, मोर्चा, किसी जगह के अंदर जाके छुप जाएं। फरमाए लवल्लो, अलबत्ता ये फिर जाते हैं, यानी पूरी टर्न बैक करके उधर जाते हैं। इलैही वहुम यजमहून, और वो अपनी रस्सियाँ तोड़ाते हैं। यानी इनका हाल ये है कि ऊपर से तो मुंह से आके आपके साथ बड़ी बातें कर रहे हैं, अंदर के हालात आयत 56 और 7। नंबर एक, याहलिफून बिल्ला, कसमें खाते हैं झूठी कि हम आपके साथ हैं, मैं आपसे बड़ा प्यार है, बस सच बताएं, क्या आप कहें, दिल की हालत ये वो। दूसरी बात है, अंदर से हाल क्या है इनका कि अगर इनको इस्लाम से छुपने के लिए कोई पनागा मिल जाए, कोई दूसरा इनको सपोर्ट कर दे, आ जाओ हमारी तरफ, कोई गार मिल जाए, कोई थोड़ा माली इसबाब मिल जाए, कोई कहीं सर छुपा सके, तो ये आपको फिर छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे कोई जानवर खौफ के मारे अपनी रस्सियाँ तोड़ाता है, कभी देखे किसी ऐसे जानवर को? सुनते हैं कभी जानवर डर जाते हैं तो फिर वो रस्सियाँ तोड़ा के रातों को भागते हैं। इनकी कैफियत भी यही है। असल में अल्लाह अपने नबी को बता रहा है, ये बड़ी इस्तरारी कैफियत में मदीना में आपके साथ रह रहे हैं। अगर इनको जजीरा नुमाए अरब में कहीं से कोई कॉल आएगी ना, तो ये भाग जाएंगे। इनको इस्लाम, इसकी तरक्की, इसके तकाजे इतने बुरे लगते हैं। आप देखिए कि इसमें जो आखिर के लफ्ज़ है ना, यजमा खून, इसको देख लीजिए। जम जीम मीम हा, जमहल फर्स कहते हैं घोड़े का तेज़ी के साथ दौड़ते जाना, इस तरह से कि सवार के काबू में ना रहे। घोड़ा अपना सर इतना ऊंचा करे कि दौड़ता जाए और सवार इसकी गर्दन को मोड़ ना सके, बेकाबू होना, तो यहाँ सरकशी का मानी है। अल जुम्माह कहते हैं जंग में शिकस्त खाकर भागने वाले के, जिन्हें मैदान में लाना मुमकिन ना हो। जमहतिल मरअतु मिन ज़ौजिहा, औरत अपने खावन से नाराज होकर अपने माँ बाप के घर चली गई, बगैर इसके कि शौहर ने इसको तलाक दी हो, ये इसके लिए भी आता है। इसी तरह जुमैहु मर्द के उज़्वे ख़ास को भी कहते हैं, और अलजमूह उस शख्स को कहते हैं जो बेकाबू होकर अपने जज्बात के पीछे चले, बहुत ही जज्बाती शख्स। एक एक लफ्ज में भी इसके मानी होते हैं। सिर्फ ये देख लीजिए कि अल्लाह ने मुनाफिक की कैफियत किस तरह खोल के रख दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुतअख्खिर कुलूबना मिनन निफाक वअमालना मिनर रिया वलिसाना मिनल कज़िब वायुनना मिनल खियानती। अब अगली एक और कैफियत, वमिन हुमैयल मिजुका फिस सदकात, और ए नबी इनमें से कोई ऐसे भी हैं जो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं सदकात के बारे में। लम्स किसको कहते हैं? आँख, ये जो नहीं आँख, सर, होठों से इशारे करना, कोई बात करना, आप पढ़ेंगे आगे भी जाकर इंशाल्लाह। मुंह पर ऐब चीनी करने को कहते हैं हुमज़ते लुमज़ा, चुगलखोरी, वही लफ्ज़ है ये भी। यहाँ यल मिजू का मतलब होता है कि आपके मुंह पे आके कहते हैं बुरा, और मुंह से क्या कहते हैं कि वैसे हैं हम बड़े साफदिल, हम दिल में नहीं रखते हैं, हम आपके ऊपर डाल देते हैं। और लुमज़ा तो कहते हैं चुगलखोर को जो जमात में तफरीक डाले और दो दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काए। और ऐब का मानी भी इसमें आता है। क्या पता चला? असल में इसके पीछे एक वाक्य है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात और सदकात का जितना माल भी आता था उसको अपने हाथ से तकसीम करते थे। ये भी बड़ी बात है, ये नबी ही कर सकते थे काम, हर एक नहीं कर सकता था। क्योंकि जो लीडर होता है ना, या आप कह लें कि नबी या अमीर, जो भी आपका मुकाम था, हम सब जानते हैं एक से ज़्यादा आपकी हैसियतें थी, वो ज़िम्मेदार होता है कि किसी के साथ हक तलफी ना हो। दूसरे भी सही कर सकते थे लेकिन आपको तसल्ली ना होती। इससे एक लीडरशिप की क्वालिटी भी दिखती है कि माली मामलात को जिस हद तक हो अपने हाथ में, और अपने हाथ में नहीं तो अपनी नज़र में ज़रूर रखना चाहिए। और अपनी नज़र में नहीं रखेंगे ना, तो आप कसम नहीं खा सकते कि किसी के साथ ज़्यादती हुई है कि नहीं, और किसी की चीज़ सही इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। अब हुआ क्या कि माल की तकसीम के दौरान एक मुनाफिक ने आके आपके मुंह पे आपको टोक दिया, या मोहम्मद ए दिल नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के साथ तकसीम कीजिए। मुराद ये थी कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप कोई इंक्लाइनेशन है जो आपको अच्छा लगता है उसको ज़्यादा दे देते हैं, और दिस एंड दैट। इस पर अल्लाह के नबी को गुस्सा आया, आपने फरमाया वही लका व मई या दिलो इज़ालम अकुन आ दिलो, तुझे वही लो, तू बर्बाद हो जाए अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अच्छा ये गुस्सा किसको आया होगा, जिसको उस दिन नहीं मिला। तो अगले दिन क्या हुआ होगा, फ़ैनो तुम इन रदू, फिर अगर उनको अता कर दिया जाए तो खुश हो जाते हैं, व इल्लम यू तऊ मिनहा, और अगर ना दिया जाए उनमें से, इज़ा हुम यस्खतून, तो फौरन नाराज़ होते हैं। और सुख्त लफ्ज़ है जिसमें गुस्से का दर्जा है, खून खौलने लगता है उस वक़्त, उनको लगता है हमें नहीं दिया दूसरों को दे दिया, हमें अच्छा नहीं दिया दूसरों को अच्छा दे दिया, हमें महरूम कर दिया दूसरों को महरूम नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी ये बातें क्या हैं कि ये नबी के पास भी जो आके बैठे हैं ना, ये ज़ाती फ़ायदों की उम्मीद पे बैठे हुए, वैसे इनको कुछ नहीं चाहिए, यानी ये इस्लाम के साथ बस अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए। किसी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी वो जगह बनी नहीं, अपने नाम नहीं हुई, लेकिन वो जो लोग स्तीरे के होते हैं उनमें से एक ने पैगाम दिया इधर मेरी गाड़ी खड़ी होगी, दूसरे ने कहा इस कमरे में मेरा फलां रिश्तेदार रहेगा उधर रहेगा, और ये अल्लाह वाला बंदा सोच रहा था कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हाल ये है कि जगहों पर नज़रें पहले पड़ गई हैं। याद रखिए दीन के कामों में लीडरशिप के झगड़े अमूमन इन्हीं बातों पर पड़ते हैं, लेन देन में, उसको ज़्यादा उसको कम, मुझको दिया उसको नहीं दिया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अगली आयत में इसका हिस्सा, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और अगर वो राज़ी रहते इस पर जो कुछ दिया इनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने, वक़ालू, और क्या कहते, हसबुनल्लाहु, हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है, सयूतीन अल्लाह मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, अनकरीब अल्लाह और उसके रसूल हमें फिर भी अपने फ़ज़ल से नवाजते रहेंगे। यानी ये कोई आखिरी मौका थोड़ी है जिसमें हमें कुछ मिल रहा है, आज नहीं भी दिया तो कल दे देंगे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, यकीनन हम अल्लाह की तरफ रग़बत करने वाले हैं। तो ये कहते तो क्या होता, इनके हक़ में बेहतर होता। ये क्या बताएगी बात कि मुस्बत सोच वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं, वो किसी मौके को आखिरी नहीं समझते, वो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बदगुमान नहीं होते, अच्छा गुमान रखते हैं, और वो अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने की बजाय इन सारी चीज़ों की, जी नाइंसाफ़ी है या तो बड़े मसले हैं क्या बताएं अंदर खाता कितना कमज़ोर है, नहीं, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो अच्छी नज़रें लगाते हैं आगे से आगे। और यहाँ चंद बातें उस वक्त के हालात की भी समझिए, बड़ी अजीब बात कहने लगी हूँ, हैरत होगी आपको, लेकिन नबी सल्लम के दौर के अंदर मदीना के जो मुनाफिक थे ना, उनकी दो बातें कॉमन थी, नंबर एक मालदारी और दूसरी सन रसीदा थे, बूढ़े लोग थे, निफाक का शिकार हुए ही बड़ी उम्र के लोग, जवान अल्लाह के नबी के साथ ही बन गए और ख़ुद वो बड़े हो गए। बल्कि ये जो ऊपर बात हुई थी ना कि औलादें उनकी आंखों का अजाब बने, उस पर बात मेरे जहन से चली गई थी कि जो अल्लाह ने कहा कि इनकी औलादें इनकी खुशी का ज़रिया नहीं होंगी, तो खुशी का ज़रिया औलाद कब होती है, आप एक लम्हे में बोल देंगे नहीं को, तो गलत कहा आपने। औलाद का नेक होना उन माँ बाप के लिए खुशी का ज़रिया होता है जो खुद भी नेक हो, बद की औलाद नेक हो जाए तो वो कहते हैं ये क्या हो गया, चलें मुसलमान की औलाद मुसलमान होगी तो खुशी का ज़रिया होगी, और मुसलमान की औलाद कुफर पे चली गई तो गम पे। काफिरों और मुनाफिकों की औलादें अगर उसी रविश पे रहती ना जो उनकी थी नबी के साथ और दीन के साथ, तो वो खुश होते। हुआ क्या, खुद बुढ़े बाबे माल के रसिया, दिलों में निफाक रखे हुए, नबी के रास्ते के रोड़े, एक एक का बेटा आला से आला साहबी बन गया, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला ही नाम था, आपका दस्ते रास्त बन गया, अबू जहल का बेटा आप देखिए इकरमा, यहाँ ये बात है, वहाँ जो बात छेड़ी थी ना उसको अब यहाँ समझिए कि ये बूढ़े लोग थे। सिर्फ कहते हैं कि मुनाफिकों की लिस्ट में सिर्फ एक नौजवान का जिक्र मिलता है और ग़रीब तो कोई भी नहीं था। यह अलविदा और नहाय में इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है, जाके पढ़ लें। कहते हैं कि ये लोग मदीना में जायदादें बनाते और अपने फैले हुए कारोबार देखते। दुनियादारी ने इनको मसलहत परस्त बना दिया। जब इस्लाम मदीना में पहुंचा और आबादी के एक बड़े हिस्से ने पूरे इखलास और ईमान के जोश के साथ इसको कबूल भी कर लिया, तो इन लोगों को एक अजीब मुश्किल पड़ गई। क्या देखा कि एक तरफ तो खुद इनके कबीलों की कसरत, बल्कि इनके बेटों और बेटियों तक को इस नए दीन ने मुतासिर कर दिया। ईमान का, इस्लाम का नशा चढ़ गया। और अगर ये खुद उसी कुफर पे रहते हैं, इनकार पे रहते हैं, तो फिर हो सकता है ये सारी कसरत इनको भी छोड़ दे, इनकी इज्जत ख़त्म हो जाए। कह लें इनके घरों में बगावत शुरू हो गई, खाना जंगी शुरू हो गई। दूसरा क्या था कि अगर ये दीन का साथ देते हैं तो फिर सारे अरब से लड़ाई मोल लेंगे, ये भी तो है ना। देखिए, मुनाफिक हमेशा वापसी के रास्ते खोल के इस्लाम की मदद करता है। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन बाकी सारे मुझसे खुश हों, इस वक्त मैं और तो नहीं किसी को चाहिए। ओ नहीं, फिर मैं नहीं हूँ, सॉरी, मैं फिर वो मेरी दोस्त नाराज़ हो जाएगी, फिर मेरे शौहर, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, वो मेरा मुन्ना सा 3 साल का बच्चा नाराज़ हो जाएगा अगर इस वक्त मैं उसकी तरफ ना गई। इनको ये डर था कि अगर नबी का साथ दिया तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे, तो लिहाजा वो मसलियत पसंद हो गए। इन्होंने क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कसम खाना अपना वतीरा बना लिया। और हाल क्या था इनका कि दिल इनके चाहते नहीं थे, काम इनको वो करने पड़ते थे। और यानी आप, मैंने शुरू में जिक्र किया ना कि मुनाफिक की हर वक्त की कैफियत बुरी क्यों होती है, उसको वो करना पड़ता है जिसका दिल नहीं कर रहा होता। और ऑपोजिट भी है इससे, जो करने को दिल चाहता है वो कर नहीं पा रहा होता। वो कहना चाहिए कि ना ख्वास्ता नमाज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जंग में ले गए तो रोते धोते ले गए, जिहाद पे ले गए तो पीछे खड़े बातें कर रहे हैं, ज़कात को जुर्माना और तावान कहते थे, जंग की बात आ जाए कहते थे फिर मुसीबत पड़ गई, फिर काम करना पड़ेगा, हाय अब ये करना है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये किसी सुराख या बिल में घुस के छुपने को पसंद करेंगे इस्लाम के इन तकाज़ों को निभाने से। लिहाजा ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ बेनकाब कर दिया। हैरत की बात है। अब आप देखिए कि ये सारी बातें पढ़कर मुझे आपको क्या लग रहा है। अगर दिल में इत्मीनान है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तराब है तो बेहतरी की उम्मीद है, और अगर दूसरी कैफियत होती तो आप इधर कभी ना होते, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा गुमान रखें, कमी बेशी को पूरा कर दें, कोई हर्ज की बात नहीं। अच्छा, अब हाल देखिए, ये तो मालदार मुनाफिकों का हाल हो गया। अब अगर आप ये देखें, जैसे मैंने तذکرہ कर दिया कि कुछ लोग ही, चंद गिनती के लोग थे मुनाफिक जो गरीब भी थे, ये आप दूसरा एंगल समझिए, दौलतमंद और औलादों मालों वाले और बड़ी उम्र के लोग अमूमन मुनाफिक थे, लेकिन चंद लोग गरीब भी थे। तो ये जो आयत है ना, आखिरी जो हमने भी पढ़ी है, इसमें गरीब मुनाफिकों का हाल है। निफाक में यकसा हैं, लेकिन इनकी मजबूरियाँ, ये इस्लाम के पास आते हैं चलो मदद मिलेगी, आज माल आया वह चंदा लेके आते हैं, तो ये तमा की खातिर मुसलमानों के पास आते थे, चलो ज़कात उशर में कुछ मिल जाएगा, क्योंकि अगर इस्लाम छोड़ा तो ज़कात में से हिस्सा निकल जाएगा। लेकिन दिल में चूँकि खोट होता है ना, तो ऐब चीनियाँ शुरू करते थे, दूसरों को बढ़ा देते हैं, हमें नहीं देते, ये है वो है, मेरे साथ तो छेड़ है, फलां के साथ तो प्यार ही बहुत है, ये है वो है। अल्लाह कह रहा है इनको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से और ख़ुद से।